आदरणीय जयंती दीदी जी का हम 1 हाथ की ताली से बहुत बहुत मंच पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे बाप दादा से मिलन के साथ साथ हम आपसे भी सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी, आप बाल्यकाल से ही प्यारे बाबा के मामा की पालना के अधिकारी बने हैं, साथ ही आप वर्तमान अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका भी हैं ब्रह्मा कुमारीज के। आप साथ ही यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के अनेक देशों के ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों के डायरेक्टर भी हैं। आपने 50 वर्ष से अधिक समय से समाज के अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु अथक प्रयास करते हैं। आपके विवेकशील करुणामय अंतर्दृष्टि आज के जटिल मुद्दों पर स्पष्टता व प्रकाश बिखेरती है। आपने विशेष रूप से जानकी दादी जी की भी सुंदर पालना की से संपन्न बने हैं और अनेकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, उदाहरण मूर्त भी हैं। तो ऐसे फरिश्ते स्वरूपा आदरणीय जयंती दीदी जी से आज हम सुनेंगे। आपका विषय है उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त कैसे बने। आदरणीय जयंती दीदी जी,
ओम शांति। एक ही दिन में आपके कितने क्लासेस हो चुके, सवेरे से लेकर सचमुच स्टूडेंट लाइफ, योगी लाइफ का मधुबन में आकर के अनुभव होता। तो बाबा कितना न उदार चित है, उदार मूर्त, उदाहरण मूर्त दोनों ही। जो पहले से ही बाबा के पास प्लान था कि इतना बेहद का स्थान बने जहां पर सब आकर के बाबा के याद का आनंद प्राप्त करें। जिस समय ये स्थान लिया गया सब तरफ जंगली था और छोटा सा ही स्थान जहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज भी है, वहाँ से बहुत छोटी सी कुटिया थी बस। परंतु उस घड़ी ये स्थान लिया गया और फिर समय अनुसार प्लान खुलता गया। विश्व सेवा के लिए जब मैं कहानी सोचती हूँ कि 69 में ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप धारण किया और 71 से लेके फिर विश्व की सेवाएं बाबा ने खुद ही एंजल रूप से आरंभ की। बाबा के पास प्लान था, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों के पास प्लान था, जिस आधार पर दादी जानकी को भी भेजा और 40 वर्षों के अंदर 110 देशों में बाबा के स्थान बन गए ताकि विश्व का उद्धार हो सके। यहाँ कई बिजनेस वाले भी बैठे हैं, वो भी सोचते होंगे 40 वर्ष में 110 देशों में हम अपना स्थान बना सके, कम ही ऐसे होंगे। और इस वर्ष में तो कई स्थानों की गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, भारत में भी अथवा विदेश में भी। किसके पास प्लान था? किसी मनुष्य के पास ये प्लान बिल्कुल ही नहीं था। शिव बाबा के पास प्लान था। जैसे ही शिव बाबा अवतरित हुए, बाबा अपना कार्य तुरंत ही शुरू किया। और सबसे नजदीक से नजदीक शिव बाबा के साथ कौन है, कहेंगे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा न सिर्फ मुरली सुनते थे परंतु बाबा के वाइब्रेशंस भी कैच करते थे, ताकि फिर जिस समय आबू में आए, जो उस समय भी 1 वर्ष 13 वर्ष तो कराची की योग तपस्या और 1 वर्ष आबू की योग तपस्या, उस 14 वर्ष की तपस्या में ब्रह्मा बाबा को भी हर प्रकार से जो वाइब्रेशंस बाबा से मिलते रहे, उससे बाबा भी समझते गए कि सब तरफ ये आवाज फैलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि बाबा जब योग कराते थे कई बारी पहाड़ों में, तो बहनें बाबा से पूछती थी, बाबा आज आप कहाँ थे? क्योंकि लगता नहीं था कि बाबा यहाँ साकार में उनको दृष्टि दे रहे थे, लगता था बाबा दूर दूर कहीं दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा से जब पूछते थे, बाबा मुस्कुरा के कहते थे, बाबा तो सब आत्माओं का बाप पिता है, तो आज बाबा दूर दूर तक भिन्न भिन्न देशों में सकाश दे रहे थे। तो ये है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदार मूरत। शिव बाबा कुछ नहीं अपने लिए चाहते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए। कौन ऐसा हो सकता है जो अपना कुछ न सोचे, सब कुछ बच्चों के लिए ही सोचे। हम कहेंगे बाप और साथ साथ दादा। दादा भी अव्यक्त रूप से भी कितने वर्षों से ऊपर से ही सेवा कर रहे हैं। लास्ट में मैं करुणा भाई की बात सुन रही थी कर्म फिलॉसफी के संबंध से। ब्रह्मा बाबा ने अपना इतना श्रेष्ठ कर्म किया, जो बिल्कुल 21 जन्म तो किया। आपने बाबा की कहानी सुनी भी है कि लास्ट तक भी बाबा का जो 83rd जन्म था, उसमें भी बाबा हर प्रकार से संपन्न थे, चाहे भक्ति भावना में संपन्न थे, चाहे लौकिक हिसाब से सबका प्रेम प्यार रिस्पेक्ट, चाहे धन दौलत सब कुछ था। तो आप सोचो कि इतना तो कर्म वो कर चुके और फिर भी अव्यक्त रूप से ऊपर से बाबा अपना श्रेष्ठ कर्म अभी तक कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। जब मेरे से कोई पूछता है कि अकर्म किसको कहा जाता, तो सत्युग में भी हाँ कुछ उस समय के कर्म का फल नहीं होता, परंतु जो किया हुआ कर्म है उसका तो प्राप्ति हो रही। तो उसमें भी हम कहेंगे कि हाँ उस समय तो अकर्म न प्लस न माइनस, परंतु जो किया हुआ है अकाउंट में जमा है वो तो खाते रहते लेते रहते, ताकि फिर द्वापर युग से फिर एक कर्म का एक रिटर्न मिलता ही है। परंतु ब्रह्मा बाबा इतने वर्षों से ऊपर सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा तो कर ही रहे हैं, उसको कहते हैं अकर्ता अभोक्ता आदाग। परंतु ब्रह्मा बाबा भी 50 वर्ष से अधिक कभी ऊपर से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उसका फल विश्व सेवा कृत, विश्व की सब आत्माओं का उद्धार हो। तो सचमुच ब्रह्मा बाबा भी बाप समान, शिव बाबा सब कुछ करते हैं हमारे उद्धार करने लिए, ब्रह्मा बाबा भी इतना समय से जो कुछ कर रहे हैं हम सबके उद्धार के लिए। परंतु दोनों का तो बिल्कुल ड्रामा के अंदर बहुत 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 विशेष पार्ट। और हाँ, जब भी हम ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं सबके लिए, तो एक मानव रूप में वही एक विशेष उदाहरण है। परंतु फिर भी जो हम सभी ने जिनों को देखा है, जिनों को हम दादियाँ कहते हैं, दादाएँ भी साथ साथ थे, तो दादियाँ और दादाएँ उन्होंने भी जिस तरह से हमारे सामने एग्जाम्पल बन करके रहे और सबका उद्धार करते रहे, वो भी आप सोचो कि आप और हम जैसे मानव। ब्रह्मा बाबा के लिए ये नहीं कहेंगे आप और हम जैसे मानव, उनके लिए तो कहेंगे कि सारे विश्व में हीरो एक्टर वो एक विशेष, उसका पार्ट कोई और दूसरे से बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं। वैसे तो जो भी अष्ट रतन है, वो भी जिनों की इतनी पूजा आज तक भी चल रही है कलयुग के अंत तक, कंपैरिजन की तो बात उनों के साथ भी नहीं है। परंतु फिर भी बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने दादियों की पालना ली है। मैं देखने चाहती हूँ कौन है जिन्होंने दादियों की पालना ली। देखो यहाँ फ्रंट में तो बहुत सारे हैं और पीछे भी कुछ कुछ होंगे। पीछे वाले दादियों की पालना ली है जी, कुछ कुछ तो है। तो उनों का एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो वो भी उदार मूरत और उदाहरण मूरत। छोटेपन की दो कहानियां मैं सुनाती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि बाबा और दादियों ने न सिर्फ ज्ञान सुनाया, न सिर्फ प्यार दिया, परंतु इस तरह से पालना दी जिससे आत्मा का शिव बाबा के संबंध जुटता जाए और मजबूत होता रहे। बचपन की कहानी है, जबकि मैं 7 साल की थी और पूना में दादी जानकी हमारे घर पे आती थी और बाबा कहते हैं ना कि आप घर बैठे आपको ज्ञान मिला, घर बैठे भगवान ने आपको ढूंढ लिया। तो प्रैक्टिकल हमारी मदर और ग्रैंड मदर उनसे ज्ञान सुनते रहे। तो फिर जो मेरा बर्थडे था उस समय 8 साल की उम्र का, वो दादी ने ही मनाया। और फिर वो समर हॉलीडेज थे भारत में, अप्रैल मई मास में हॉलीडे का टाइम होता, तो हम लोग बाजू के बगीचे में क्लास करते थे। मैं समझती 8-10 बच्चे थे और उसमें से 2-3 आज तक भी संबंध में है और उन्हों को भी वो बातें याद है। तो क्लास होता था 10:30 बजे हॉलीडेज का टाइम और 12 बजे तक बहुत करके समाप्त होता था। और क्लास भी खेल पाल में होता था, कभी क्विज होता था, कभी कुछ और खेल पाल। फिर हम लोगों को छोटी छोटी प्राइज प्लास्टिक की कुछ न कुछ चीज देते थे। और फिर जब 12 बजे के बाद थोड़ा टाइम चल जाता था तो दादी आती थी और पूछती थी, आप लोगों को भूख तो नहीं लगी है? तो कोई हाँ तो नहीं कहता था, परंतु दादी खुद ही, दादी का मकान यहाँ और बगीचा यहाँ, तो दादी कुछ ले आती थी और हम लोगों को कुछ न कुछ खिलाती थी थोड़ा बहुत। बाद में मुझे पता चला कि वो ही दादी का भोजन था। दादी के साथ एक और बहन होती थी। तो आप सोचो कि उदार मूरत जो सदा ही हर आत्मा की उन्नति सोचे, हर आत्मा को बाबा के नज़दीक लाए, हर आत्मा को बहुत अच्छी यादाश्त देवे। तो दादी जिस घड़ी हमें भोजन खिलाती थी, अपना ही भोजन दे करके दादी देती थी। दादी ये नहीं सोचती थी कि अभी फिर दोबारा जाके सब्जी लेना, फिर दोबारा जा करके आटा बनाना, दादी को ये संकल्प नहीं होता था। बच्चों को भूख लगी होंगी और घर पहुँचते पहुँचते तो लेट हो जाएंगे, आकर के कुछ न कुछ हमें खिलाती थी। आप सोचो अपना पेट से, क्योंकि दादी फिर जा करके और दोपहर का नहीं बनाती होंगी, परंतु जो कुछ था बच्चों को खिला लिया। तो ये है उदार मूरत, हर बात में एक तरह से कहेंगे ये तो बहुत छोटी बात है, परंतु ऐसी बातें कभी भूलती नहीं है और सचमुच बाबा की याद दिलाती है। और फिर एक और छोटी सी कहानी, 57 दिसंबर में हम लोग विदेश चले गए सारा परिवार, बाप का बिजनेस वहाँ शुरू हुआ। तो 1959 की बात है, 2 वर्ष बाद बाबा बॉम्बे में है, जून मास है, गर्मियों के दिन है, आम का सीजन है, बाबा बड़े प्यार से आम खा रहे थे। तो बाबा विचार करते थे, तो उन्होंने पूछा, बाबा क्या आपका संकल्प चल रहा? तो बाबा दादा विश्व किशोर को बुला करके कहते हैं, मुझे वो बच्चे याद आ रहे हैं जो लंदन में बैठे हैं, उन्हों को वहाँ आम नहीं मिल रहा होगा, आप उन्हों को एयरमेल पोस्ट में आम भेजो। आप सोचो कि उस समय हमारे संबंधी कितने होंगे भारत में, किसी संबंधी को याद नहीं आया कि हम आम एंजॉय कर रहे हैं और हम बाय एयरमेल पोस्ट लंदन तक आम भेजें बाबा। तो उदारचित, हाँ सब कुछ समर्पण कर लो, विश्व की सेवा करो, वो तो बाबा ने किया है, परंतु छोटी छोटी बातों में भी इतना ध्यान। जो बच्चे योग करते हैं नहीं करते हैं, बाबा जानते हैं, शायद ना भी करते होंगे, परंतु उनों की बुद्धि में बाबा इमर्ज रहे, बाबा के साथ उनों का संबंध जुड़ा रहे, बाबा ने इतना सारा काम किया। छोटी बातों पर भी ध्यान और बेहद की बातों पर भी ध्यान। तो हम ज़रूर कुछ न कुछ तो हर रोज़ इस तरह से कर सकते हैं ना। तो हम सोचिए, दान और पुण्य में क्या अंतर है? दान है जो आपके पास है और उसमें से आप सोचते हो कि मेरी ज़रूरत इतनी है और बाकी हम भगवान के कार्य में इतना दे रहे हैं। कोई 10% सोचता है, कोई 20% सोचता है, जो जिसके अनुकूल होता वो सोचता है। परंतु पुण्य क्या है? पुण्य में ये नहीं देखा जाता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, पुण्य में ये देखा जाता है दूसरे की ज़रूरत क्या है। उस समय जो उनों की ज़रूरत है उस अनुसार वो पूर्ति हो, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उनों की ज़रूरत अनुसार पहले वो देवें और फिर हाँ मेरा तो अपने आप हो ही जाएगा। मैं अपना दान पुण्य करेंगी तो भगवान मेरा बैठा है, जो कुछ मेरी ज़रूरत है वो ज़रूर पूर्ण होंगी ही। तो मैं सोच रही हूँ कि उदार चित्त में पुण्य कर्म बहुत सारा होता, न सिर्फ दान का कर्म, वो तो है ही श्रेष्ठ, परंतु पुण्य कर्म। मानो कि दादियों को आपने देखा है, दोपहर का समय हो, कितना भी बजा हो, सवेरे से उन्होंने सेवाएं की है, परंतु दोपहर के समय भी वो टाइम निकाल करके यदि किसी को ज़रूरत है उस समय वो समय देंगे, उन्हों को पोस्टपोन नहीं करेंगे। नहीं, वो फील कर रही है कि इस आत्मा को अब क्या आवश्यकता है, तो फिर उन्हों को उस अनुसार देती है। तो उदार चित यदि हम बनने चाहते हैं तो दादियों के जीवन को देखें और बाबा की कहानियाँ और मम्मा की कहानियाँ सुने, तो उन्हों से भी आपको पता चलेगा कि कैसे वो बन सकते। उसमें भी दादी के साथ एक और छोटी सी घटना है, वो बताती हूँ। ग्लोबल हाउस जब खुला था 91 में, सितंबर मास था और सर्दियाँ थोड़ी बहुत फिर अक्टूबर से शुरू हो जाती, तो दादी तो भारत आ गई। फिर दिसंबर में दादी का वहाँ आना हुआ, तो फिर किसी भाई ने एक बहुत गर्म स्वेटर, दादी तो बिल्कुल छोटी थी तो उसके साइज़ का तो था ही नहीं, तो उसको मालूम था कि ये तो दादी किसको दान करेंगी ही, परंतु वो बहुत अच्छा स्वेटर लेके आया, बहुत गर्म। तो दादी ने उससे पूछा, वो फैमिली का ही भाई था, मीन्स इतना नज़दीक सेवा करने वाला, तो दादी ने उससे पूछा कि इसका खर्चा कितना है। तो वो लज्जा करता था, संकोच करता था दादी को बताने में। तो दादी कहती है कि हाँ, मैं तो आपकी भावना को समझ रही हूँ, आप नहीं बताने चाहते हैं, परंतु आप मुझे दाम बताएंगे तो फिर मैं कहेंगी कि आप या तो 12 और लेके आओ या तो नहीं। तो उसने बताया, तो दादी ने कहा ठीक है, आप 12 और ऐसे लेके आओ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ सेवा करते हैं और ख़ास करके नाइट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो हम बहाने ही रखते थे, घर वाले ही अपने भाई लोग ही करते थे वो सेवा। दो व्यक्ति एक चक्कर पर रहता था और दूसरा फिर रिसेप्शन में, तो उन्हों को सर्दी लगती है, तो उन्हों के लिए मैं चाहती हूँ। तो वो लेके आया, फिर दादी से प्रश्न पूछा, दादी आपके पास ये संकल्प था कि इस प्रकार की सेवा हो सकती, मेरे पास क्यों नहीं ये संकल्प आया? मैं आपके लिए सिर्फ एक ही लेके आया, फिर आपके कहने से अच्छा है आपने मुझे बताया तो मुझे भी चांस मिला सेवा का, परंतु मेरे दिल भी ऐसे आप जैसे बने, वो मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? दुलारी ने उसको दो कदम बताए। एक तो पहले दिल को साफ दिल हो। जब आत्मा की साफ दिल होती है, सच्चाई सफाई होती है, कुछ अपने लिए, कुछ सेल्फिशनेस का कुछ और भावना नहीं है, परंतु दिल को स्वच्छ दिल, सब कुछ बाबा के लिए, तो फिर पहले तो अपने दिल को साफ करना होता है। मेरी कुछ तमन्ना, मेरी कुछ आशाएं न हो, जिसको बाबा कहते हैं, और भारत में भी उसका गायन आता, इच्छा मात्रम अविद्या, जिसमें हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने सब कुछ दिया है, और हम बाबा को क्या कहेंगे कि हमें और क्या चाहिए। तो जब इतनी हमारी साफ दिल होंगी, तो ही फिर बड़ी दिल भी होंगी। तो एक तो चाहिए साफ दिल, फिर दूसरी चाहिए बड़ी दिल। और बड़ी दिल में जबकि बाबा हमारा बेहद का है, परिवार भी हमारा बेहद का है। तो जब हम बेहद के परिवार को देखते हैं, सबके साथ हमें वो अपनापन की महसूसता हो, तभी फिर हम सबके लिए सोचेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि उदार चित बनना है, अपने दिल को अच्छी तरह से साफ करना है, सचमुच आप देखेंगे कि बाबा ने लास्ट तक बाबा के बच्चों को, सभी को बहुत सुखी रखा है। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। सिंपल हो, भले सिंपल हो, परंतु ऐसे हो जो आत्मा बिल्कुल तृप्त हो, संतुष्ट हो। तो उसमें खास करके भारत में तो अति गरीबी देखने को मिलती है। विदेश में ऐसे आंखों के सामने इतनी गरीबी नहीं नजर आती। भारत में तो न सिर्फ आज, कब से कलयुग की अंतिम घड़ियां तो एनीवे चल ही रही है, तो देखते हैं अति गरीबी। तो ऐसे बाबा के बच्चों की हालत नहीं है। तो बाबा ने हमें कितना प्यार से संभाला है 84 जन्मों के चक्कर में। तो दिल हमारी संतुष्ट हो, साफ हो, कोई भी अपने लिए संकल्प न हो, और सबके लिए वो अच्छी भावना कि हमारे ही परिवार के हैं, तो फिर उसमें हर एक के लिए, और न सिर्फ ब्राह्मण परिवार अपना परिवार है, परंतु बाबा की एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। कईयों ने शायद सुनी होंगी, परंतु मैं समझती बहुतों ने नहीं सुनी होंगी। ये है 1965-66 की बात।
Yeah। विकराल विनाश खड़ा आगे। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो सर्दियों के दिन थे और मेरी एक बहन सोफिया कॉलेज में पढ़ती थी आबू में। ऊपर में आप लोग जानते हैं कि बोर्डिंग स्कूल्स कई है, क्योंकि हिल स्टेशन में कई लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में यहाँ ही रखते। तो उसके माँ बाप ने उसको यहाँ ही बोर्डिंग स्कूल में रखा था और बाबा को गार्डियन बनाया था, ताकि फिर जो वो नंस है वो उसको छुट्टी देवे, आकर के बाबा के पास दिन भर बिताए, नहीं तो नहीं आ सकती थी। तो ये बहन ज्योति कई बारी बाबा के पास पूरा ही दिन बिताती थी, तो नंस को मालूम था। तो एक बारी फिर नंस ने ज्योति को कहा कि आप अपने बाबा से पूछना कि उनके पास कोयला कहाँ से आता है, हम लोगों को सारे गाँव में कहाँ पर भी कोयला नहीं मिल रहा और सर्दियाँ बहुत है। तो ज्योति ने बाबा से पूछा जब नेक्स्ट टाइम आए, तो बाबा हंस पड़े। तो ज्योति ने कहा कि बाबा मैं नंस को क्या उत्तर दूँ। तो बाबा कहते सचमुच सारे शहर में कहाँ भी कोयला नहीं मिल रहा। तो ज्योति ने कहा ऐसे नंस कहती हैं। तो बाबा ने पूछा कि बच्चियाँ स्नान कैसे करती है। तो ज्योति ने कहा कि ठंडे पानी से ही करती है और खाना बनाने के लिए भी बहुत कम ही कोयले यूज़ हो रहे हैं, तो वो खाना भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम नंस को बोलना कि बैल गाड़ी कल सवेरे 8 बजे यहाँ भेजे, तो फिर हम कुछ कर लेंगे। तो नंस को जाकर के उसने बताया। तो उन्होंने पूछा कि कितना खर्चा होगा। तो ज्योति ने कहा वो तो मैंने पूछा ही नहीं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एनीवे नन आई थी खुद ही और बैलगाड़ी साथ में थी। तो बाबा ने सारा वो भर लिया, जो भाई लोग थे उन्होंने सारी बैलगाड़ी भर करके दी। फिर नन ने लज्जा करके बाबा से पूछा बाबा आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहाँ पर भी शहर में कोयला बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ये तो सबको बहुत मदद मिलेंगी, परंतु इसका खर्चा कितना। बाबा ने उसको दृष्टि देख करके कहा वो बच्चियाँ भी मेरी ही बच्चियाँ हैं। तो बाबा कुछ नहीं चाहते, तो वो तो बड़ी खुश होकर के वो चले गए। फिर बाबा ने ज्योति को बताया कि दान दी हुई चीज़ कभी भी बिक्री नहीं की जाती है। और फिर ज्योति को बताया कि अपनी सरला दीदी जो अहमदाबाद में जोन हेड थी और अभी उन्होंने थोड़े वर्ष पहले शरीर छोड़ा, उसकी जो मासी थी, वैसे सरला दीदी की बहन, सरला दीदी के मदर सब ज्ञान में ही थे, तो उन्हों की जो मासी थी टिल्लू मासी, सब उसको नाम ही देती थी टिल्लू मासी, तो टिल्लू मासी के पति का खान थे धनबाद में, आपके जोन के ही, ईस्टर्न जोन का ही धनबाद, तो वहाँ पर पहले प्राइवेट कोल माइंस थे, फिर तो बाद में वो उसको नेशनलाइज कर दिए, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, परंतु जब तक वो था और 80s तक वो कार्य चलता रहा, हर साल पूरा ट्रेन के वैगन्स में बाबा के घर में कोयला वहाँ से आता था, और कई यहाँ शायद बैठे होंगे जिन्हों को याद होगा, क्योंकि 70s 80s में भी ट्रेन नीचे आती थी और बड़ी दादी हम लोग को इतना उमंग उल्लास से कहती थी, चलो 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 आज हम स्पेशल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, परंतु आप लोग अपने रंगीन कपड़े पहनो, तो विदेश से आते थे तो ट्रैवलिंग में तो एनीवे वो लोग रंगीन कपड़े ही पहनते थे, तो हम नीचे जाते थे और फिर कोयला को उठा करके हम सब, बिल्कुल कोयले को उठा करके हम लोग अपने ट्रक में भरते थे, तो वो ट्रक ऊपर आती थी, तो इतना समय तक उन्होंने वो सेवा की, तो कहने का मतलब कि वो जो दान आया हुआ था, तो बाबा ने कहा कि वो कभी बिक्री नहीं होता, और वो बच्चियाँ तो मेरी ही बच्चियाँ हैं, तो आप देखो कि बाबा उदारचित, लड़कियाँ कौन है, किस धर्म की है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, बाबा के लिए नो प्रॉब्लम, कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरी ही बच्चियाँ हैं, तो ऐसी ऐसी बातें जब सोचती हैं कि बाबा का दिल कितना बड़ा दिल, कितना दिल को हर आत्मा को जो सुविधा की ज़रूरत है, हम कुछ भी सहयोग दे सकें, उनको हम मदद करें, उधार करेंगे तो उनको न सिर्फ हमें वो याद करेंगे परंतु बाबा को भी याद करेंगे, शिव बाबा के साथ उनका संबंध जुड़ेगा। और मेरे पास और कुछ ना भी हो, अपना समय तो है, किसकी दुख दर्द की कहानी सुनने के लिए तो हम 10 मिनट 15 मिनट तो दे सकते हैं ना, क्योंकि वैसे आम तौर पर तो लोग कहेंगे बिजी बिजी बिजी, कौन बैठ के किसकी कहानी सुनता है आजकल, आजकल तो बहुत खर्चा करके साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपकी कहानी सुनेंगे, बाकी तो घर में कोई इतना टाइम ही नहीं देता सुनने के लिए, परंतु आप यदि देखो कि किसको ज़रूरत है, दिल भारी है, आप थोड़ा समय निकाल करके उनकी कहानी सुन लो, या आप किसी को भी मिलते हैं चलते हुए भी, आप एक सेकंड मुस्करा करके उनसे हेलो करो, वो भी उनको बहुत मदद मिल सकती, कोई मेरे को देखने वाला है, कोई मेरे से बातचीत करने वाला है, कोई पूछने वाला है, तो आप हर रोज़ ज़रूर ये सोचो कि न सिर्फ मुझे अपना संभाल करनी है, मुझे तो अपनी संभाल करनी ही है, परंतु मैं औरों के लिए थोड़ा बहुत क्या कर सकती। हाँ, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान धन है, जो आज भी बाबा बता रहे थे, परंतु कई ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिन्हों को आप ज्ञान देंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तो ज्ञान ही देंगे, हमको ज्ञान नहीं सुनना है, तो उनको भी हम कुछ सहयोग देंगे किसी भी प्रकार से, तो उस आधार पर वो नज़दीक थोड़ा आकर के फिर शायद वो ज्ञान सुनने भी लायक बनेंगे, तो ज़रूर ये हमें करना होता है। और उदाहरण मूरत, आप सोचो कि कोई भी विशेष कार्य कुछ भी करता है, परमात्मा की याद का कुछ कार्य विशेष करता है, तो वो भी सबके दिलों पर छाप लग जाती है, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे उदाहरण बनना है, नहीं, ये सोचते हैं कि ये काम मुझे अवश्य ही करना है, परंतु वो करते हैं, फिर बाद में अनेकों को प्रेरणा कैसे मिलती वो हमें बाद में पता चलता, परंतु जिस कार्य से अनेकों को प्रेरणा मिले, मेरे से और कुछ भी न हो, प्रेरणा देने वाला काम हो, यदि हम ये ध्यान रखते हैं तो फिर उसमें ज़रूर उदाहरण मूर्त बन ही जाते हैं। चाहे आपने अपना नियम बिल्कुल पक्का रखा हो सवेरे उठने का, चाहे आपने गर्मी सर्दी न देखी हो ज़रूर क्लास में हाजिर होने का। तो हम जब क्लास में आते हैं अपने लिए तो आते ही हैं, परंतु मैंने देखा है कि एक दो को देख करके भी वो प्रेरणा मिलती है। देखो फलाना इतना क्लास में आता है, फलाना इतना क्लास में आता है। एक माता है लंदन में और वो रहती है साउथ लंदन, अपना आश्रम है नॉर्थ लंदन। साउथ लंदन में भी छोटा सा स्थान है, परंतु संडे के दिन सभी बड़े आश्रम पर आते हैं, तो बड़ा संगठन हो जाता है, परिवार से मिलना हो जाता। तो वो माता से मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था उसको गाड़ी तो नहीं है, कैसे आप आते हो, कितना टाइम आपको लगता? तो कहती मुझे 3 घंटा लगता है सवेरे आने में। बाबा ने उस दिन कहा ना कि 6 घंटा भी लगे, फिर भी तो सेम सिटी है, शहर है, क्या बड़ी बात है। भगवान ऊपर से आता है क्लास कराने के लिए और आप कहते हो कि इस आश्रम दूर है। तो ये माता प्रैक्टिकल, पहले तो कुछ पैदल करती क्योंकि इतना सवेरे बस और ट्रेन संडे के दिन नहीं चलते हैं वहाँ, फिर बस भी लेती, फिर ट्रेन भी लेती, फिर बस लेती, तो आकर के पहुँचती है। और कोई जवान नहीं है अभी, तो उसकी आयु भी बड़ी है, परंतु तो भी संडे ज़रूर आती है और इतना टाइम लगता है। फिर वापसी में थोड़ा कम टाइम, क्योंकि तब तक बसेस ट्रेन चालू हो जाती। परंतु आप सोचो कि ऐसे एग्जाम्पल यदि हमारे सामने है तो हमें लज्जा आएंगी कि आधे घंटे की दूरी पर हम कहते हैं कि आश्रम दूर है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती। तो जो मुझे लगता है कि बाबा की श्रीमत है, यदि मैं बाबा की श्रीमत को अपने दिल से पालन कर रही हूँ, अनेकों को वो प्रेरणा मिलती और वो भी ऐसे करने लगते हैं। परंतु आप सोचो कि सारे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बाबा कितनी बातों में रहे। और हाँ, शिव बाबा प्रेरणा देने वाले थे ब्रह्मा बाबा को, परंतु प्रेरणा को कैच करके फिर वो कार्य करने वाले वो तो ब्रह्मा बाबा खुद ही थे। तो पहले तो जो ब्रह्मा बाबा को समर्पण होने का संकल्प आया, हाँ शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम ऐसे बनने वाले हो, तुम्हें ही ये कार्य करना है, तो फिर बाबा को वो संकल्प आया तो बाबा ने किया। परंतु साथ ही साथ फिर जिस घर ये बाबा प्रैक्टिकल जीवन में समर्पण कर रहे थे, तो किसको आगे रखा? 4 माताएं और 4 कुमारियां, 8 का ग्रुप बना करके सब कुछ उनके सामने समर्पण किया। और माताओं को आगे रखना आज तक भी कईयों के लिए मुश्किल लगता, परंतु उस समय ऐसी बहनें थी, मैं समझती 8 में से 1 भी बहन नहीं थी जिसको अपना बैंक अकाउंट हो। परंतु बाबा, शिव बाबा की प्रेरणा और ब्रह्मा बाबा का विश्वास, और वो कार्य करके दिखाया। और फिर जैसे ही सब कुछ चलता रहा, हर बात में ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, हम लोगों के सामने कितने ढेर एग्जाम्पल्स है। आप सोचो उसमें भी बाबा जो कहते ना कि लास्ट को फास्ट, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाले थे, ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल था, मम्मा एग्जाम्पल थी, और शिव बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि, तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स रखे जो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। मम्मा 16 साल की, कोई नहीं कह सकता मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। बाबा 60 ईयर्स का, हर बात में आप देखो दोनों बातों को सामने रख करके हर प्रकार का एग्जाम्पल बाबा ने हमारे सामने रखे। तो आज तक भी हम भी कईयों के लिए एग्जाम्पल बन सकती हैं। बाबा साकार मुरली में शब्द कहते हैं, आप समान बनाओ। फिर अव्यक्त मूल्य में बाबा आप समान कम कहते, अव्यक्त मूल्य में बाबा कहते हैं बाप समान। तो जो आप समान की बात है, आप सोचो कि मेरे समान कितने हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, कुमार है, गृहस्थी है, भाई है, बुजुर्ग है, छोटे हैं, किस कैटेगरी में हम फिट हो सकते, मेरे समान कितने होंगे मेरे संपर्क में। तो मैं उनों को ऐसे एग्जाम्पल बन करके दिखाऊं जो वो भी सोचे कि हम तो ये कर सकते हैं। उस दिन मैं छोटे ग्रुप से बैठी थी, उसमें एक कुमारी थी। तो कुमारी कहती है कि परंतु यूथ के लिए ये कैसे संभव है। तो मैं थी, फिर एक और बहन थी मेरे बाजू में, तो मैंने कहा मैं 19 साल की आयु में बाबा के पास समर्पित हुई। और उस बहन से पूछा आप कितनी आयु के थे, उसने भी कहा मैं 19 साल की थी। तो मैंने कहा आपके सामने एग्जाम्पल्स है, हम लोग भी कोई समय तो यूथ थे, अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं, सफ़ेद बाल आ गए हैं, परंतु उस समय तो हम भी यूथ थे। तो हाँ, आज का समय कुछ कहेंगे टू मच अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस है संसार के, परंतु उस समय भी कोई कम नहीं थे। तो उदाहरण बनना है तो फिर हर बात में जो बाबा ने कहा है मुझे करके दिखाना है, क्योंकि आज का समय वो समय नहीं है जो हम सिर्फ बोलें और कोई मानने के लिए तैयार हो। जब हमारे जीवन को देखेंगे, हमें देखेंगे कि हमारी खुशी कैसे स्थायी रहती है, हमारे जीवन में शांति किस तरह से है, तो न सिर्फ ओम शांति कहने का मंत्र है, परंतु ओम शांति प्रैक्टिकल बनने का मंत्र है। आप कहाँ तक हर सिचुएशन में शांति से उपास कर सकते, वो आपको देख करके उसे सीखेंगे। जिस समय अर्थक्वेक आया था ग्रीस में, न्यूयॉर्क की कहानी ने तो सभी ने सुनी है राम प्रकाश भाई की, परंतु ये एक और कहानी है। हम ग्रीस में एथेंस में एक अपनी राजयोगी बहन थी, तो वो प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार में वो मैनेजर थी। तो ओपन स्पेस में वो सारा प्रोग्राम था, कारोबार चलता था फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर प्रेस थे और ऊपर में वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे। तो अर्थक्वेक आई तो सब लोग घबरा गए, खड़े हो गए, ये वहाँ शांति से बैठी रही, तो सब उसके तरफ देखने लगे। तो उसको देखा कि वो शांति से बैठी है, हिल नहीं रही है, वो भी बैठ गए। बस एक दो मिनट की ही बात होती, फिर वो शांत हो गए। तो फिर बाद में तो वो सब ठीक आराम से बच गए बाहर, फिर बाद में निकले। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि तुम बिल्कुल हिली नहीं, क्यों? तो उसने हंस के कहा मुझे मालूम है कि जो शरीर का हिलना होता, आप सीढ़ी से नीचे उतरो और कुछ झटका आए तो आपकी टांग या बाएं जरूर टूटती, परंतु एक स्थान पर बैठे हैं वो एक दो मिनट के लिए आपकी सेफ्टी है, परंतु शरीर की सेफ्टी की दूसरी बात, अंदर आत्मा मैं अपना, जो आप लोगों को मैं ओम शांति की ग्रीटिंग करती हूँ, तो वास्तव में मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो उसके एग्जाम्पल से वो सब लोगों का सलामत रहे। तो हर बात में जो बाबा की आज्ञा है, कहाँ तक हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फिर औरों को मदद मिलेंगी। अभी किसी ने मुझे कहा कि किसी के पति ने शरीर छोड़ा है पर एक मास पहले, परंतु यहाँ आई है और बिल्कुल उसकी स्थिति को देख करके जो उसके सब परिवार वाले हैं उन्हों को भी प्रेरणा मिली है। आप सोचो, हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ये शब्दों की बात होती है, परंतु उस समय तो उस बहन ने, वो आज तक भी अजमेर में सेवा करती है शांता बहन, तो उसकी स्थिति वो थी, तो बाबा ने वो उसको कहा। परंतु आज भी इस माता की बात, उसने अपनी स्थिति शांति से बिल्कुल मजबूत रखी और फिर उससे कितनी सारे परिवार वालों की सेवा हो गई। तो ऐसे नहीं कि हमें हिमालय क्रॉस करना है तो ही हम उदाहरण मूर्त बन सकते, नहीं। अपने जीवन में कोई भी बात सामने आती है, हम प्रैक्टिकल वो करके दिखाएं तो हम कहेंगे कि हाँ, हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा की बातों को हम दिल में स्वीकार करके पालन कर रहे हैं। तो उस पालन करने से ही अनेकों के लिए हम उदाहरण मूर्त बन जाते हैं। तो उसमें कोई लंबी चोरी प्लान बनाने की भी बात नहीं है, क्योंकि क्या सिचुएशन आती है हमें पता नहीं होता, परंतु सिर्फ बाबा का श्रीमत का हाथ अच्छी तरह से पक्का, हमने हाथ पकड़ा हुआ है तो बाबा हमें उस सीन से भी पार कर लेगा, तो फिर सबको उससे बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती रहेंगी। तो बस बुद्धि का योग क्लियर हो, दिल साफ हो, बड़ी दिल हो और साथ साथ श्रीमत का हम पालन करें, तो बाबा अवश्य ही बहुत कुछ सेवाएं हर एक आत्मा से कराएंगे। बाबा हम सबको कहते हैं आप हीरो एक्टर्स हो, उसमें 84 जन्मों के चक्कर में कितने हीरोज स्टेज पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा के हर बच्चे बिल्कुल हीरो एक्टर है। क्यों? क्योंकि आजकल के जीवन जो और लोगों की हम देखते हैं बहुत नीचे ऊपर, बहुत फ्लक्चुएशन वाली है, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, परंतु हीरो वो जो बिल्कुल अपने दृढ़ विश्वास से हर समय आगे बढ़ता रहे, तो हम औरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते। अभी तो थोड़े घंटों के अंदर ही बाबा के मिलन का हम आनंद लेंगे, परंतु अभी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। परंतु जो भी बातें सुनते हैं, बुद्धि को जो भोजन मिलता या बुद्धि के अंदर जो ज्ञान रतन होते, तो उसमें फिर थकान नहीं होती कभी, आत्मा सदा ही खुश रहती। ओम शांति।
बनाएंगे तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे,
हम दुनिया नई बनाएंगे तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे,
चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे,
हम
हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे।
पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नहीं बनाएंगे।